ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। अठारहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज सवेरे ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुआ। इसमें 75 देशों से आए लगभग 6,000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और विरासत से भी परिचित होंगे। सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी दिवस कार्यक्रम से हुई। इसका आयोजन ओडिशा सरकार ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, पवित्रा मार्गरेटा, डॉ मनसुख मांडविया, रक्षा निखिल खडसे और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन वैश्विक भारतीय समुदाय के साथ भारत के संबंधों का उत्सव मनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन की एक खास बात, इसमें ट्रिनिडाड और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कांगलू की वर्चुअल उपस्थिति है। वे सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के लिए उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे विशाखापत्तनम के निकट पुदीमतका में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन केंद्र परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र होगा। इस परियोजना पर लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट हरित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में विशाखापत्तनम में दक्षिण तटवर्ती रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखा जाना भी शामिल है। एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज होगी। इन विधेयकों में 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधान संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। कानून और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों को प्रस्तावित विधेयकों के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देंगे। 39 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। ये समिति अगले संसद सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए एक योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत संस्थान की स्थापना के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्री गडकरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में कुशल चालकों की कमी है तथा सरकार और अधिक चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। केंद्र ने श्री वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे 14 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे। वे इसरो के मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। श्री नारायणन अभी केरल के वलियामाला में इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC के निदेशक हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्थ योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैन्य बल में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्व तेलुगु सम्मेलन आज से आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का में प्रतिष्ठित तेलुगु लेखक, साहित्यकार, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमणा, दोनों तेलुगु राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय और राज्य मंत्री, सांसद, कलाकार और अभिनेता शामिल होंगे। हॉकी इंडिया लीग में कल वेदांत कलिंग लॉन्सर्स ने श्राची राड बंगाल टाइगर्स को 6-0 से हराकर इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। आज शाम 6 बजे गुनासिका का मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन के साथ होगा। यूपी रुद्राज और हैदराबाद तूफान्स के बीच मैच रात 8:15 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।